अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नये मां चरणान्तिके। कल मैंने रामायण से यह बतलाया, जब जब सनातन धर्म इसको असुर लोग नष्ट कर देते हैं, नष्ट करने लगते हैं और साधु संतों के ऊपर में अत्याचार करते हैं, तब भगवान युग युग में अवतार लेते हैं और अधार्मिकों को, असुरों को नष्ट कर, उन्हें मारकर साधु संतों की रक्षा करते हैं और पृथ्वी का भार उतारते हैं। विशेष करके हमने सनातन धर्म में ये बतलाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस आत्मा का कृष्ण के प्रति जो सेवा की प्रवृत्ति है, यही सनातन धर्म है। विशेष करके सनातन धर्म का सबसे ऊंचा स्थान श्रीमती राधिका जी का भाव है, जिस भाव से कृष्ण की सेवा करती हैं। उनकी सेवा ही हमारा सनातन नित्य धर्म है। अब आगे की कथा पर चलता हूं। इक्ष्वाकु के सूर्य वंश में इक्ष्वाकु राजा हुए और उनके महाप्रतापी महाराज दशरथ हुए। वो दसों दिशाओं में उनका रथ चलता था, अर्थात दसों दिशाओं को अपने अधिकार में कर लिया था, इसलिए उनका नाम दशरथ हुआ। रथ जहां जहां पर गया, वे बड़े उदार और गुणी महाप्रतापी राजा थे। उन्होंने संतान के लिए, पुत्र के लिए उन्होंने 360 रानियों से विवाह किया, जिसमें तीन पटरानियां प्रधान थीं, कौशल्या जी, सुमित्रा और कैकेयी। अभी कैकेयी की शादी महाराज दशरथ से नहीं हुई थी 360 रानियों से, और कौशल्या जी से, सुमित्रा जी से तो शादी हो चुकी थी, किंतु किसी को भी पुत्र नहीं हुआ। महाराज दशरथ के केश आधे पक गए आधे काले रहे। अब उनकी जुआवस्था समाप्त हो गई और प्रौढ़ अवस्था आई। बड़े चिंतित हुए, हमको पुत्र नहीं है। इसके बाद में राज्य कौन संभालेगा और हमारा पिंडदान कौन करेगा? इसलिए चिंतित थे। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए चले और खेलते 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 शाम हो गई, थक गए। पास ही में कैकेयी नरेश की राजधानी थी, कैकेयी के पिता की। वह उनके मित्र थे, उनके यहां गए शाम को। राजा ने देखा जी हमारे परम मित्र महाराज दशरथ आए हैं, उनका बड़ा स्वागत किया, आदर किया। और कैकेयी परम सुंदरी गुणी और युवती थी, अभी शादी नहीं हुई थी। महाराज कैकेयी नरेश ने कहा बेटी कैकेयी महाराज दशरथ आए हैं, उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इनको किसी प्रकार का कष्ट न हो ये देखना। कैकेयी बड़ी गुणी थी, उसने महाराज दशरथ की खूब सेवा शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न कर दिया। सवेरा हुआ, महाराज दशरथ कैकेयी नरेश से आदेश लेने के लिए कि अब मैं अयोध्या जा रहा हूं, उनके पास में गए। बोले जी अब तो मैं अयोध्या जा रहा हूं और यदि कहिए तो आपसे एक चीज मांगू। ठीक है मांगो। महाराज दशरथ ने कहा आपकी कन्या बड़ी रूपवती और गुणवती है और रानी होने योग्य है, यदि आप उचित समझे तो कैकेयी के मेरे साथ कैकेयी का विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा यह संभव पर नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? हमने मन ही मन में विचार किया है कि इसकी शादी जहां करेंगे इसके गर्भ से जो बेटा पैदा होगा पुत्र, वही राज का सिंहासन पर बैठेगा। और तुमको तो बहुत स्त्रियां हैं और वही पहले वाले जो हैं उनके पुत्र राजगद्दी पर बैठेंगे, ऐसा नियम है। तो वो हंसने लगे महाराज दशरथ और बोले ये तो बड़े सौभाग्य की बात होगी, हमारी किसी भी रानी से कोई पुत्र नहीं है और यदि तुम्हारी कैकेयी से पुत्र होगा तो स्वयं ही राजा बन जाएगा, क्योंकि और से तो हमको कोई संतान ही नहीं है। अतएव मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके गर्भ से जो पैदा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। राजा ने खुशी के साथ में कैकेयी से भी शादी कर ली। महाराज दशरथ उसको लेकर के अयोध्या में आए। एक तो अभी नई उम्र और बड़ी गुणी सुंदरी भी अद्भुत, कौशल्या इत्यादि से भी कम उम्र की है और खूब सेवा महाराज दशरथ की करती थी छाया की तरह रहकर। सो महाराज दशरथ करीब करीब उसके वशीभूत थे। अब कुछ दिनों के बाद ही देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ। उस समय देवता लोग महाराज दशरथ के पास आए, महाराज हम लोगों में कोई सेनापति नहीं है, आप कृपा करके चल करके हम आपको अपना सेनापति नियुक्त करते हैं, असुरों से युद्ध करना है। महाराज दशरथ प्रसन्न हुए कैकेयी ने कहा कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी, वो भी चली। युद्ध छिड़ गया, भयानक युद्ध। उस युद्ध में महाराज जी के, दशरथ महाराज जी का रथ का धुरी टूट गया और वो पहिया निकल गया और एक तरफ में झुक गया। अब तो चल नहीं सकता था। उधर से शत्रु लोग, असुर लोग भयानक रूप में उनके ऊपर में वार कर रहे थे। कैकेयी ने रथ के धुरे को जो टूटा था पकड़ करके उठा दिया और तब महाराज दशरथ युद्ध करने लगे और युद्ध में उन असुरों को पराजित किया। इनके जो घाव लगे थे महाराज दशरथ के, उसकी भी बड़ी चिकित्सा उसी ने ही की तो वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम दो बार मांगो हमसे, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, रथ को चलाया है, उठाया है, नहीं तो मैं जीत नहीं सकता था, और हमारे अंगों की सेवा करके इसको ठीक कर दिया, दो बार मांग लो। मैं तो आपकी पत्नी हूं, मुझे बर से क्या प्रयोजन, आप ये मेरा कर्तव्य था। तो नहीं, फिर भी तुम वो दो बार मांग लो। जब महाराज दशरथ ने बहुत बार कहा तो कैकेयी ने कहा ठीक है, मैंने बर आपसे ले लिया, जब जरूरत पड़ेगी तब हम समय के अनुसार में हम दो बर ले लेंगे, अभी अपने पास में थाती रखिए। थाती रखना मैंने रखिए, जब जरूरत होगी, मेरी चीज है, मैं ले लूंगी। कैकेयी के कहने पर महाराज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जब चाहेगी दो बार दे देंगे। अब कुछ दिनों के बाद में उनको तो कोई लड़का नहीं, महाराज वशिष्ठ ने कहा एक श्रृंगी ऋषि है, थोड़ी सी सिर में सिंह जैसी, और वे यज्ञ कराना जानते हैं, यदि वो आकर के तुम्हारा यज्ञ करा दे, पुत्रेष्टि यज्ञ माने पुत्र होने के लिए, तो तुमको जरूर संतान हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा। तो उन्होंने किसी प्रकार से सिंगी ऋषि को बुलवाया और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। जब यज्ञ में आहुति दी तो आग से अग्नि देवता प्रकट हुए और हाथ में खीर लिए हुए थे। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा लो ये खीर, जिसको तुम चाहो अपनी रानियों में से उसको दे दो, उसको पुत्र होगा। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, उस खीर को ले लिया। देखो ऋषि लोग कैसे थे प्राचीन काल में, चाहते तो वर्षा हो जाती, चाहते तो पुत्र हो जाते, सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती उस यज्ञ से। बड़े तेजस्वी थे और छोटा भी बालक ब्राह्मण का, ऋषियों का, यदि किसी को श्राप दिया तुम सातवें दिन मर जाओगे तो वो भी मर जाएगा, और मरे हुए व्यक्ति को नारद जी कहेंगे जो उठ जाओ तो उठ करके खड़ा हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष में ये सब विद्याएं थी, शुक्राचार्य जी ऐसे ही थे, मरे हुए को जीवित कर देते थे, किंतु उनको शुक्र का आचार्य कहा गया, जन्म भक्ति नहीं। तो उन्होंने वो खीर ले लिया और अग्नि देवता अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने खीर वहीं पर, उनकी तीनों रानियां यज्ञ में बैठी थी, उसको दो भाग किया, आधा कौशल्या को दिया और आधा कैकेयी को दिया। उन लोगों ने देखा जी ये हमारी प्यारी बहन है, इसलिए उन्होंने कौशल्या जी ने अपना आधा का आधा करके एक चौथाई भाग और कैकेयी ने भी चौथाई भाग सुमित्रा जी को दे दिया। इसलिए कौशल्या के गर्भ से राम परिपूर्ण ब्रह्म सूर्य में 12 कलाएं होती हैं, 12 कलाओं से पूर्ण, और कैकेयी के गर्भ से भरत जी भगवान के अंश, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम की सेवा करते थे और उनके साथ रहते, और शत्रुघ्न जी उनका पुत्र वो भरत जी के साथ में रहता था छाया की तरह और उनकी सेवा करता। ये दोनों जोड़ियां थी। जब वे कुछ बड़े हुए तो वशिष्ठ जी के गुरुकुल में गए, वहां पर लकड़ी काटना, कुदाल से जमीन खोदना और सब काम, भूखे रहना और तीर धनुष चलाना, संगीत विद्या और जितनी प्रकार की कलाएं हैं, नृत्य गीत इत्यादि सब कलाओं में उनको शिक्षित किया चारों भाइयों को। इसके बाद में वो चारों भाई लौट करके घर आए। कुछ दिनों के बाद में जब और बड़े हुए, एक दिन हठात उनके घर पर राजमहल में महर्षि विश्वामित्र जी आए, बोले देखो मैं ऐसे ही तुम्हारे घर में नहीं आया, मैं कुछ काम से आया हूं। हम लोग यज्ञ करते हैं रावण के अनुचर ताड़का और सुबाहु इत्यादि राक्षस हमारे यज्ञ को करने नहीं देते, उसे बुझा देते हैं, उसमें टट्टी कर देते हैं, पैखाना पेशाब कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। मैं उसे मार सकता हूं किंतु हमारा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, इसलिए मैं खुद नहीं मारना चाहता। आपके बेटे जो राम और लक्ष्मण हैं, उनको कुछ दिनों के लिए हमें दीजिए और वो हमारी यज्ञ की रक्षा करके लौट आए, उनको लौटा दूंगा। महाराज दशरथ ने कहा ये छोटे छोटे अभी बालक दूध पीने वाले, ये आपके यज्ञ की रक्षा क्या करेंगे, मैं अपनी सेनाओं के साथ में चलता हूं और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा आपके द्वारा नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, आप मोह छोड़िए और इनको दे दीजिए, नहीं तो अभी संपाद दे दूंगा, राज्य से भ्रष्ट हो जाएंगे। डर गए। वशिष्ठ जी वहां थे, उन्होंने कहा महाराज दशरथ विश्वामित्र तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, तुम्हारा क्या कल्याण होगा अभी तुम नहीं समझ सकते, ये बहुत उच्च कोटि के ऋषि हैं, हमारे समान ही ब्रह्मज्ञ हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, बिना चिंता किए हुए ही दे दो, अच्छी बात है। उन्होंने पहले भरत और शत्रुघ्न को साथ में दिया। भरत और शत्रुघ्न को वही बोले जैसे यही राम लक्ष्मण है। जब आगे गए कुछ बढ़े तो विश्वामित्र जी ने पूछा देखो यहां से वहां हमारे सिद्धाश्रम में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ते में असुर लोग विघ्न डालने वाले हैं, मारकाट मचाते हैं, उससे जाना बड़ा भारी कठिन है, और एक रास्ता तो है और सुरक्षित है, किंतु वो 6 महीने में जाएगा और ये जाएगा 3-4 दिन में। कौन रास्ते से चलूं? उन्होंने कहा सुरक्षित रास्ते से ही चलना अच्छा है, देर वाला। विश्वामित्र जी उनको लौट आ करके ले गए महाराज दशरथ के पास। तुम हमसे छल कर रहा है, यह राम लक्ष्मण नहीं है, राम लक्ष्मण को बाहर करो और नहीं तो फिर अभी संपाद दूंगा। तब वशिष्ठ जी के कहने से उन्होंने राम और लक्ष्मण को दिया। उन्होंने भी उनसे भी पूछा किधर से चलना है। उन्होंने कहा कि जिधर में असुर लोग उत्पात मचाते हैं उधर से जल्दी वाला 3 दिन वाला रास्ता चलो। तब उनको विश्वास है। जब सिद्धाश्रम में पहुंचे, सिद्धाश्रम में ही मेरा घर था पूर्वाश्रम में, तो वहां पर पहुंचे, दूर से राम विश्वामित्र जी ने कहा देखो यहां पर हम लोग यज्ञ करते हैं पास ही, और रावण की अनुचरी ताड़का और उसके पुत्र 2 सुबाहु और मारीच ये यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, तो तुम सावधान रहना और उनको कुछ बाण की विद्या मंत्र सिखला दिए। जब और आगे बढ़े तो देखा वही ताड़का विराट लंबी चौड़ी और ऊपर से नरमुंडों की वर्षा करती हुई रुधिर और ये सब वर्षा करके यज्ञ को ध्वंस कर रही है, और विश्वामित्र के ऊपर में भी आक्रमण करना चाहा इन दोनों राम लक्ष्मण के ऊपर में। तो राम लक्ष्मण जी राम श्री रामचंद्र जी ने धनुष लिया, उस बाण चढ़ाया, सुबाहु तो एक बाण में ही खत्म हो गई और ताड़का और सुबाहु उसका पुत्र भी, और मारीच दौड़ा मारने के लिए तो उन्होंने एक ऐसा बाण मारा कि वह लंका में समुद्र के पास में जाकर के किया। अब आकर के सब असुरों को वहां पर जितने थे सबको उन्होंने मारा, यज्ञ की रक्षा हुई, उन्होंने यज्ञ पूरा कर लिया। विश्वामित्र जी ने कहा जे देखो हम अभी जनकपुरी में जाएंगे, वहां पर महाराज जनक अपनी कन्या का स्वयंवर रचे हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई ये शंकर का धनुष है उठाकर और प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी के विवाह करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा क्योंकि सीता जी बचपन में जब तक कुमारी थी प्रतिदिन बाएं हाथ से उस धनुष को उठाकर और वहां पर लीप पुत देती और उसकी पूजा करती। जनक ने देखा जी हमारी बेटी अनायासी एक धनुष को उठा रही है, इतना बड़ा भारी शंकर का दिया हुआ, और फिर लिप पुत करके पूजा करती है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी ऐसा कोई वीर हो जगत में जो इस धनुष को उठाकर और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर चढ़ा देगा मैं उसी से अपनी कन्या की शादी कर दूंगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा की और देश देश में निमंत्रण भेज दिया, जिन जिन लोगों का आना हो सो आए और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। क्या कीर्तन! ओ अनुवाद करेगा इंग्लिश।
So last night we were hearing, in order to protect religion and also to protect the sadhus in every age, Bhagavan appears in incarnation. that the Lord appeared, Sri Krishna appeared in the form of Ram to save the earth and to establish Sanatana Dharma. And last night we heard Sanatana Dharma is really the prakriti or the tendency of the soul to perform service to Krishna. Therefore, the dynasty of the Suryavans coming from King Ikshvaku came Dasarath Maharaj. Dasarath Maharaj, because he could control the 10 directions, he married 360 wives. Of these, three were prominent, Kausalya, Sumitra, and afterwards Kaikeyi. But despite marrying so many brides, Dasarath Maharaj had not produced any son. In fact, half his head had become white. Therefore, on a hunting trip, he went to near Afghanistan, and there he met with his dear friend, named King Naresh. So Naresh was very... So he was very pleased to see his bosom friend, Dasarath Maharaj. Therefore, he welcomed him, and he ordered his daughter, Kaikeyi, who was very beautiful and had many qualities, you should serve him in terms of eating, drinking, everything. Therefore, she served him so expertly, Dasarath Maharaj became captured by her. So when he was about to leave, then he asked the king, please give me your daughter's hand in marriage. So King Kakendra said, I cannot do that because I have made a vow that whatever son comes from the womb of my daughter, then he must be king. Then you have so many wives, the rule is that the eldest wife, her son will be king. Then Dasarath Maharaj laughed, I don't know why you're worrying, I do not have any son yet. So if she has a son, it's a matter of good fortune, and I promise I will make him king. Therefore, because she was very beautiful, she was more youthful than Kaikeyi, because of her, more youthful than Kausalya, because of her qualities and her service attitude, she completely captured the heart of Dasarath Maharaj. Another time the demons attacked the demigods. Therefore the demigods approached Dasarath Maharaj, we have no king. Please can you fight on our behalf as the general? Therefore Dasarath Maharaj was fighting, but when he was fighting, the wheel of his chariot fell off. Therefore Dasarath Maharaj could not fight. So Kaikeyi, she put her finger there to keep the wheel there, and they continued fighting. Also, Dasarath Maharaj was injured that time Kaikeyi saved his life. Therefore, Dasarath Maharaj said, because you did two things for me, you enabled me to conquer the demons and you protected my life, I will give you two benedictions. Then Kaikeyi said, I'm your wife, not some businesswoman. I don't need your benedictions. But Dasarath Maharaj gave so much pressure. She said, okay, I'll accept those two benedictions, but I will not ask for them now. Maybe in the future I will ask for them. Therefore, that time the sister Rishi, he came to King Dasarath Maharaj and said, if you bring the sage Sringi Rishi, because he had two horns on his head like a deer, if you bring him here to Ayodhya and he performs sacrifice on your behalf, then you will have a son. So that was done, and from the fire came one Agnideva. In his hand he had a big pot of pious sweetgrass. He gave that to Dasarath Maharaj and said, whoever you give this to will produce a very nice son. Therefore Dasarath Maharaj cut the sweetgrass in half. Half he gave to Kausalya, the other half he gave to Sumitra. Then Kaikeyi and Kausalya both gave half of their sweetgrass to Lakshman was very attached to Ram. He was like his shadow, and Satrughna was always engaged in the service of Bharat. Therefore, Ram was the Supreme Lord endowed with 12 qualities. His expansion was Bharatji. Therefore, But she said they went to Gurukul and they learned all the arts, like weaponry, music, cooking, everything. So that time, at some time after, Bhishma took him and said, Tarak and his two sons, Subahu and Marich, are causing many disturbances in my yajna. I can kill them, but there will be disturbance. My yajna will be just broken. Therefore, give me your two sons, Lakshman and Ram. They will kill the demons and protect my yajna. Then Dasara Maharaj said, they are small kids, they cannot do anything. I will go and fight on your behalf. Then, with my whole army, then Vishnu became angry. Hey, if you don't give me those two sons, I'll curse you. And all your kingdom will be destroyed. Then Dasara Maharaj was shaking. That time Vishishta said, oh, don't think that Vishwamitra, oh king, don't think Vishwamitra is an ordinary person. He is very powerful, he only means for your welfare. You cannot understand what he is doing now, but you will understand that later. Therefore, Dasara Maharaj, he tried to cheat Vishwamitra by killing his other two sons, Satyugna and Bharat. So as they came to a crossroads, then Vishwamitra asked to the two boys, there is two paths to take. One goes directly to my ashram, Siddha ashram, that's Gurudev's birthplace. And the other place, the other road is a very long way, but there's no demons on it. That takes a few more days. Six months. Which way do we take? The Bharat Shunya said, we should take the long way, because it's safer. And he said, oh, you cannot be Ram and Lakshman. He took the two sons and said, king, don't try and cheat me again. Well, curse you. Then he gave the two sons, Ram and Lakshman. They took Ram and Lakshman to the same T-junction. Then he said, there's two paths. One is the express path, where there are many demons waiting to take toll and tax. And the other one is very long. Which way do we take? Ram and Lakshman said, we will take the express path. Then he knew, this must be Ram and Lakshman. Then Vishwamitra taught them some mantras and some weapons. And they went. That time, Tarak, Subhav, Marichi, they came and were trying to pass through and pass urine and on the yajna. That time Ram, he killed Tarak, he killed Subhav, and he took a weapon, an arrow with no point, hit Marichi in the chest and threw him 800 miles to Lanka into the ocean. Therefore, on the way back, then they agreed, let's go to Janak Maharaj's place. Videhi. So as they were going there, Janak Maharaj had a daughter named Sita. And there was one bowl of Lord Shiva that was very heavy. But Sita, because she's the energy of Ram, when she used to come every day to clean, she would lift it in her left hand, sweep underneath it, then worship the bowl. And Janak Maharaj was washing. So Janak Maharaj promised, I will only marry my daughter to someone who can lift this bowl of Lord Shiva. And the next thing it was open.
Sri Ramchandra ji, Vishwamitra ji ne Ram aur Lakshmano se kaha, Janakpur mein aisa yagya ho raha hai, unka nimantran aaya hai, isliye hum logon ko wahan par chalna chahiye, dekhna chahiye ye kaisa dhanush yagya ho raha hai. Jab Maharaj Dasarath जनक जी ने प्रतिज्ञा की तो देवता लोग मनुष्य का वेश बनाकर आए और धनुष को उठाना चाहा किंतु उठा नहीं. रावण भी सुना और उन्हें सीता से विवाह करने के लिए रात में आया और धनुष को उठाने की चेष्टा की. थोड़ा सा धनुष उठाई था कि उसके अंदर में दब गया और निकलना उसके अंदर से बड़ा मुश्किल हो गया. किसी प्रकार से निकल करके धनुष को प्रणाम करके वो भी चला गया. इसी तरह से बड़े बड़े बाणासुर और दूसरे लोग आए किंतु अंत में सिर झुका करके चले गए, किसी से नहीं उठा. अब इधर में रामचंद्र जी जब आ रहे थे और लक्ष्मण शत्रु उनके साथ में विश्वामित्र जी के साथ में, रास्ते में एक बड़ा सुंदर जंगल सा था, उसमें हरा भरे वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, फूलों से लदे हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहचहा कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। रामचंद्र जी ने पूछा, इस जंगल इस बगीचे में कोई है नहीं और इतना हरा भरा क्यों? उन्होंने कुछ दिन पहले की बात है, यहां पर गौतम नामक एक महा ऋषि तपस्या करते थे। वो उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या उस समय में बड़ी सुंदरी थी, देवताओं की अस्परा जैसी। वो स्नान करने के लिए कहीं जाने वाले थे, जा रहे थे। इंद्र वेश बदलकर उन्हीं का रूप धारण किया गौतम का रात के समय, और वहां पर गया और पास में चंद्रमा को लिया, जे तुम जरा गेट पर रहना, कोई विपत्ति आए तो हमारी रक्षा करना। इसलिए चंद्रमा भी उनके साथ गया। रात में गौतम का वेश बनाया था इंद्र ने, और उसके साथ में सहभोग किया। और जब निकल करके आ रहा था, इतने में गौतम ऋषि स्नान करके पहुंच गए। अरे ये कौन? मैं तो हूं, मेरे जैसा ही ये दिखता है। बस मृगछाला से उसे मारा और बोले, जब तुमको हजारों नेत्र भग हो जाए। और चंद्रमा को भी शाप दिया, तुम प्रतिदिन एक कला छीण हो जाए। और इसके बाद में आए अहिल्या के पास में, ओ तुमने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं भी स्नान करने गया और इंद्र के साथ में मिली, जाओ तो पत्थर हो जाओ। तो वो पत्थर की शिला पड़ी हुई है, आप अपने चरणों से स्पर्श तो कर लें। उनके कहने से राम ने ज्यों ही चरण से स्पर्श किया, उनकी चरण की धूली लगी, अत्यंत सुंदर वही अहिल्या जैसी नारी बन गई। राम की प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करके वो भी जहां गौतम ऋषि थे वहां चली गई। रामचंद्र जी ने कहा, वो गौतम जी अब सब कुछ भूल जाएंगे और तुमको ग्रहण कर लेंगे। बस उनके पास में चले गए। इसके बाद में अहिल्या जी का उद्धार करके जनकपुरी में पहुंचे। महाराज जनक सुन करके अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ में इनका स्वागत किया और एक बगीचे में रहने के लिए स्थान दिया। बहुत अच्छा। वहीं मैं रात में सोए। दूसरे दिन रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वो बगीचे से फूल लाने के लिए गए। वो गुरु जी उनकी पूजा करते हैं, विश्वामित्र जी उनके लिए। क्या करते हैं रामचंद्र? प्रतिदिन जब विश्वामित्र ऋषि सोने जाते हैं तो उनके चरणों को दबाते हैं, और जब वो सो जाते हैं, नहीं होने से भी आदेश देते, अब हो गया तुम जाओ सो जाओ, तब आकर के सोते थे। और इसके बाद में जब वो सोने जाते तो लक्ष्मण रामचंद्र जी का चरण दबाते, उनकी सेवा करते, और तब उनके सो जाने पर सोते। लक्ष्मण सवेरे और राम विश्वामित्र से जगने से पहले गुरु जी की सेवा के लिए सब कुछ प्रस्तुत कर देते। ये सब हम लोगों को सीखने की बातें हैं। यदि पिता माता हैं तो ऐसे ही सेवा करो, गुरु हैं तो ऐसे ही सेवा करो, शिष्य का ऐसा ही कर्तव्य है। गुरु से पहले उठे और गुरु के सो जाने के बाद में उनकी सेवा करके सोए, उनका खाना पीना देखना सब करे। आजकल कलयुग है, धन के लिए बेटे पिता को गोली मार देते हैं और पिता भी पुत्र को छोड़ देता है। पश्चात देशों में देखा, जब पुत्र थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको पढ़ाया लिखाया, फिर उनको नहीं देखते, वो अपना जैसा कमाए धमाए जो इच्छा सो करे। हमारे भारतवर्ष में ये रीतियां थी, हम लोगों को वैसे ही भारत की संस्कृति पर चलना है। बात की बात में पश्चात देशों में डाइवोर्स हो जाता है, यहां की लड़कियां सीखे। रामचंद्र जी का कैसा आदर्श था, सीता जी का कैसा आदर्श था, राम के छोड़ने पर भी वनवास दे दिया, किंतु सीता जी ने उनको नहीं छोड़ा और राम ने भी छोड़ा, रानी सीता को, अपनी प्यारी सीता को छोड़ा नहीं, सब सब अपने हृदय में रखते थे।
अगर दूसरी शादी भी नहीं की राम जी ने, दूसरी शादी भी नहीं किया भगवान राम ने,
तो इस तरह से रामचंद्र जी जब बचपन में भरत इत्यादि के साथ में खेलते तो स्वयं हार जाते और भरत जी को जिता देते। आजकल एक फुटबॉल है, वो एक तरफ से मार रहा है, दूसरे तरफ से दूसरा मार रहा है, एक तरफ में भरत है, एक तरफ में राम है, राज है इतना बड़ा। भरत जी गेंद मारते हैं राम के तरफ में, मैं नहीं भोगूंगा राज्य की गद्दी पर, तुम बैठो। और रामचंद्र कहते हैं क्या, हमारा छोटा भैया बैठेगा। हमारे कुल की रीति बड़ी खराब है कि बड़े को ही राज्य मिलता है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने भाइयों में सब राज्य बांट करके, ये कैसा आदर्श था, इसीलिए राम राज्य कहते थे। हिंदुस्तान में स्वतंत्रता मिली राम राज्य करने के लिए, तो राम राज्य नहीं रावण राज्य हो रहा है, यहां पर भी रावण का ही राज्य चल रहा है, सर्वत्र ऐसा ही देखा जाता है, कोई आदर्श नहीं, न स्त्रियों का आदर्श, न पुरुषों का, न गुरुओं का आदर्श, न शिष्यों का, सब चौपट हो रहा है। इसलिए हम यदि चाहें तो वही राम राज्य की जो पद्धतियां हैं, संस्कार हैं, उनको लाए और सुखी रहे। माता पिता की सेवा करना चाहिए, भाइयों पर भाइयों जैसा प्रेम आदर्श हो, राम का माताओं के प्रति जैसा आदर्श था, प्रतिदिन सवेरे उठ करके माताओं को पिता को प्रणाम करके तब कोई काम करते थे। अब चलिए जनकपुरी में, जब जनकपुरी में इनका बड़ा स्वागत हुआ, बस विश्वामित्र को रहने का स्थान किया, दूसरे दिन सवेरे गुरु जी की पूजा के लिए फूल चुनने के लिए राम और लक्ष्मण बगीचे में गए और उसी समय सीता जी अपने सहेलियों को लेकर के अपने पूजा के लिए, धनुष की पूजा इत्यादि के लिए फूल चुनने के लिए वो भी आई। उसी समय पहली बार रामचंद्र जी ने सीता की तरफ में देखा और सीता जी ने राम की तरफ अपने पलकों को, अब किसी प्रकार से ये न करते, अपलक नैनों से देखने लगी, लज्जा छूट गई, जो हमारी सहेलियां है। रामचंद्र जी भी उनके तरफ में देखने लगे। इसके बाद में वो फूल चुन करके सीता जी देवी के मंदिर में चली गई और रामचंद्र जी ये लौट रहे हैं गुरु के आश्रम में। रामचंद्र जी कहते हैं कि हो, मुझे धिक्कार है, शादी के पहले ही मेरा मन दूसरे की तरफ में चला गया, ये तो रघुकुल की रीति नहीं है, ऐसे ही आज भी होना चाहिए। किसी भी स्त्री को देखने से उसको अपनी मैया समझो या बेटी समझो या बहन, बस तीन नाते उनसे, और कोई नाता नहीं। और पुरुष भी, क्या पुरुष को भी स्त्रियां कैसे देखेंगी? हमारे पिता है, हमारे भाई है अथवा बेटा है, ये आदर्श होना चाहिए। आजकल इसका बंधन है, माता पिता शादी देते हैं, भारतवर्ष में ऐसी रीति है, खोज खबर कर ले करते वंश देखते हैं बेटी को, तब आजकल ऐसी रीति उठ रही, बेटे को जहां इच्छा हुआ प्रेम मैरिज कर दिया, लव मैरिज, और दो दिन के बाद में तलाक हो गया और बच्चे लावारिस हो गए, उनको प्यार करने वाला मिला नहीं, नष्ट हो गए। इसी तरह से लड़कियां भी बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए ये सब जो रीतियां थी, यदि कोई सुखी चाहे तो आप लोगों में भी लड़का अपने आप लव मैरिज न करे, पिता माता पर छोड़ दे, और पिता माता जिस लड़की को वंश देख करके, विचार देख करके, व्यवहार देख करके लाए, उसे शादी करने से जीवन भर चलेगा और वो लोग सुखी रहेंगे। हम इसका बहुत देखे हैं, ऐसे लव मैरिज किया, दो दिन के बाद में छूट गया, जीवन बर्बाद हो गया, उस बच्चों का उनका भी जीवन बर्बाद हो गया, सुखी नहीं रहे। इसलिए हमारी पुरानी भारत की संस्कृति को ठीक रखना चाहिए। तो रामचंद्र जी ने ऐसा कहा। इसके बाद में गए विश्वामित्र जी ने कहा चलो जरा धनुष तो दिखाए। उस समय सभा में बड़े बड़े वीर युवक महाराज लोग बैठे थे, वो एक एक करके उठ रहे हैं, 10,000 राजा एक साथ में उसको उठाने की चेष्टा की, नहीं उठा, तस से मस नहीं हुआ। जानकी की माता जी सुनैना जी कह रही हैं कि आपने ये क्या प्रतिज्ञा कर, संसार में कोई ऐसा वीर नहीं ये उठा सके, तो सीता जी क्या हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी? और भी जो जनकपुर की लड़कियां थी कहती कि ये जोड़ी बड़ी अच्छी थी, यदि राम के साथ में सीता का विवाह होता बहुत ही अच्छा, किंतु महाराज जनक जी ने क्या उनकी बुद्धि चौपट हो गई कि ऐसी प्रतिज्ञा कर डाली। जब इतने बड़े बड़े राजाओं से, इतने बड़े वीरों से, रावण से, बाणासुर से नहीं उठा, तो ये छोटा बच्चा क्या धनुष उठा लेगा। इतने में ये लोग स्वयंवर में पहुंचे, बड़े बड़े राजा लोग उठते हैं, बड़े गर्व से धनुष को उठाते हैं, नहीं उठता, लौट जाते हैं। रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी है, यदि आदेश हो तो मैं देखूं, तो जरूर देखो। महाराज जनक ने कहा मैं जानता ऐसा जो वीर पृथ्वी विहीन है, तो मैं कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता, मैंने भूल की। उस समय लक्ष्मण जी उठे और बोले जब तक कोई सूर्यवंशी राजा है या सूर्यवंशी कोई भी है, आपको ऐसा नहीं करेंगे, पृथ्वी में देव नहीं है, यदि राम का आदेश हो तो मैं पृथ्वी को उठाकर गेंद के समान में उसको उठा करके पटक दूं, ये धनुष क्या चीज है। इसके बाद में विश्वामित्र जी ने इनको सांत्वना दी। रामचंद्र जी विश्वामित्र को प्रणाम किया और प्रणाम करके धनुष की तरफ में चले, और सब लोग तो हो कर करके हंसने लगे, ये देखो तो ये क्या उठाएगा, लक्ष्मण की तरफ में देखा। लक्ष्मण जी ने वही तो सबका भार पृथ्वी इत्यादि का संकर्षण रूप में थामे हैं, उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी को दबा दिया और उस समय में धनुष को पकड़ा और झट बिना परिश्रम के उठाया और उठा करके उस धनुष को अपरतंचा चढ़ाया। चढ़ाते ही वो तीन टुकड़े में टूट गया। बहुत प्रचंड शब्द हुआ। सीता जी और महाराज जनकपुर की स्त्रियां सुनैना जी बड़ी प्रसन्न हुई जिसने धनुष को तोड़ डाला। और इसके बाद में सीता जी को हाथ में जयमाला दी कि अब राम के गले में डालो। सीता जी हाथों में जयमाला ली कि इतना आनंद कि उनका हाथ नहीं उठ रहा था। सखियों ने हाथ लगा करके सहायता करके और गले में रामचंद्र जी की माला उनके गले में ही स्वयंवर हुआ। राजा लोग देखा जैसे सीता जी को एक छोटा सा बालक ले जा रहा है विवाह शादी, वो सब सोचे जैसे इसको अभी युद्ध में परास्त करके मार करके सीता जी को ले लेंगे, ये तैयारी कर रहे थे। चलो
After finishing the demons, then Ram and Lakshman said to Vishwamitra, "Chalo Guru, you want to go and see the Dhanush Yagya of Janak Maharaj? That time Sita was so beautiful, even the demigods, different demons came disguised in human form to try to lift the bow of Lord Shiva. Even Ram came when no one was looking at night time, and he tried to lift. He lifted a little bit, but then it fell on his fingers and he was caught and crying. Somehow he took out his hand and ran away in the middle of the night. So, there was one, as Ram was approaching towards Janakpur, there was one garden, very beautiful, many types of birds, flowers, trees. Then Ramji asked to Vishwamitra, "Oh Gurudev, this garden is very beautiful, but nobody lives here. But yes, this was the ashram of Gautam Rishi. Gautam Rishi's wife was named Ahalya. And she was very, very beautiful. Therefore, Indra became attracted to her. And with the help of the moon god, Chandra, when Gautam Rishi went to take bath, he took the form of Gautam Rishi and went there. Then they enjoyed together. As he was coming out, then Gautam Rishi came. "Hey, who are you? You look just like me, but you're not me. Then I give you a curse. The curse is? He got some curse. Then also, Chandra was cursed and he would shrink every day because he helped Indra to capture the Aholi Devi. And Aholi, because you have no shame like a stone, I curse you to become a stone." Then she began weeping. "Oh, husband, please relieve me of this curse." He says, "Don't worry. You will be relieved when your feet are touched by the dust of the feet of Sri Ramchandra." Then when Ram came and he touched that stone, she became an air and very beautiful Aholya. And Ramchandra called Gautam Rishi and said, "You should forget what happened and you should be with her." Then they came to the city of Janak Maharaj in Vidhi. That time, Janak Maharaj gave them a very nice garden to stay. And every morning, Lord Ram with Lakshman would come personally to pick flowers for the Guru Puja, for the worship of Vishwamitra. How Ram, even though he is Bhagawan, he gave a dear example. Even though he is the Supreme Lord, still, in order to give teachings to us, he accepted the position of becoming the disciple of Vishwamitra. Otherwise, if Ram also did not become a disciple of any guru, then someone would say, "Well, Ram didn't have a guru, why do I need a guru? Then in order to give us this personal instruction, he also became a disciple of Vishwamitra. And he would personally massage the feet of his Gurudev. And then after his Gurudev had given the order, okay, that's enough. Then Ram would go and take rest. Then Lakshman would massage the feet of Ram. Therefore Ram, he would wake up before his Gurudev, get all his cloth and everything ready. And then after Gurudev would take rest, he would take rest. Therefore, these are all instructions. These days, things are not like that. The Guru takes rest before the disciple and wakes up after the Guru. Therefore, all these teachings should be there. So, therefore, when Ram, he went for the morning to pick flowers for the worship of Vishwamitra, then that was the first meeting of Ram and Sita. Because Sita also came to the garden to worship Gauri, Devi, for a good husband. That was the first eye-to-eye meeting of Ram and Sita. So when Ram came back, he was criticizing himself. Oh, Lakshman, I am useless. Never in my dynasty has anyone in our dynasty given their mind to any woman before marriage, but I am attracted to that lady. Then Lakshman said, well, that must mean, because you can have no simple thought, it must mean soon you will marry her. That must be the reason. Then we would have said we should take all these instructions. Now there's so much love marriage. I love you, 1, 2, 3, then marriage, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, then divorce. These love marriages are wretched, because it's only based on lust. Then after some time, the wife leaves the husband, then she has children, there's no one to look after the children, no one to run the children. Therefore the parents, the children should give all this responsibility to the parents. They should choose a suitable wife or husband. Then everything will be peaceful. But this is Kali Yuga. These days, even to take some property from the father, the son can kill or do something for the parents. Therefore, that time was Ram Raja, ideal relationships. Therefore, if you want to be a brother like Ram. If you want to be a wife, be a wife like Sita. All we should take these instructions. When the kingdom was trying to give to Ram, then Ram was refusing and trying to give to Bala. And Bala was trying to give to Ram. The kingdom was like a football. They were kicking to each other. I don't want, you should give to him. Then this is Ram Raja, the kingdom of Ram. But unfortunately now it's become Radha Raja, the kingdom of Radha. So, thus Janak Maharaj has taken a vow, only that person who can lift and string the bow of Lord Shiva, that person will be able to marry my daughter. Therefore thousands of kings came, they could not lift. Even 10,000 kings together could not lift the bow. Then Sita's mother was very sad. Janak Maharaj has made one crazy vow. No one can lift this bow, that means my daughter will forever not be a bow. She will never have a husband. That time, Janak Maharaj said, I thought there is no heroes left in the world. That time, Lakshman became very angry. Hey! Don't say like that. We are the representatives of the Surya Vamsa. Therefore, don't say like that. I could have broken this bow myself, but I have not gotten any order from Ram. Therefore, Ramji bowed to his Gurudev and taking permission from Vishwamitra. Lakshman screws Shesh. Shesh carries the universe on his head, he doesn't even know it's there. And that Shesh is a part of Lakshman. Then Lakshman says, I could break the bow, I could take the whole earth and throw. But I have not gotten the order from my brother Ram. Therefore, Ramji took permission from Vishwamitra. Lifted it up, and in 1 second, he broke it into 3 pieces. That time, Sita Devi came to put the garland on Ram. But she was in so much ecstasy, she could not move. Therefore, her girlfriends, they took her hand, and they all put the garland on the neck of Ram. That was the Swayamvara Sita Ram.
Usi samay mein, dhanush ke tutne se prachanda shabd hua. परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, वहीं से अपना फरसा लिया और लेकर के सभा में उपस्थित हुए। हमारे गुरु जी का धनुष किसने तोड़ा बतलाओ? महाराज जनक ने तो तुमको भी मारेंगे और जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं सबको मारेंगे और तोड़ने वाले को भी मारेंगे, जल्दी बतलाओ, बतलाता क्यों नहीं? इसके बाद में फिर भैया तुम लोग बतलाओ नहीं तो सभी को मारेंगे, नहीं तो बतला दोगे तो केवल उसी को मारूंगा। फरसा लेकर के और धनुष बाण यहां पर रखे हैं, फरसा उठाए हुए हैं। उस समय लक्ष्मण जी ने कहा, अरे महर्षि जी आप बार बार डराते क्या है फरसे से? ऐसा धनुहिया छोटी सी तो मैंने बचपन में हजारों तोड़ दी, तो आपको गुस्सा नहीं हुआ? एक पुरानी धनुहिया तोड़ दिया, तुम धनुहिया कर रहा है? ये शंकर जी का दिया हुआ प्रचंड धनुष है। तो हाँ जी हमने तो तोड़ दिया है, तो फरसा क्यों दिखलाते हैं? यदि है 20 तो मारो देखें। जितना ही उनको ऐसे चिढ़ाते हैं वैसे उनका क्रोध होता है और क्रोध से उनकी भगवान की जो शक्ति उनमें थी सब राम में आ रही। अंत में राम बोले, महर्षि जी आप तो ऋषि महर्षि जैसा वेश बनाए हैं, हाथ में फरसा और धनुष, ये विरोध जैसे भी है, इसलिए आपको देख करके छोटा भाई अभी ना बूझ है किंतु सूर्य वंश में पैदा हुआ है, जहां सूर्य वंश का एक भी आदमी हो उनको युद्ध के लिए ललकारने से वो जंप ही हो तो हम लोग लड़ेंगे। तो ये बच्चा आपसे ऐसा कहा, इसका दोष नहीं है, आप क्षमा कीजिए। सचमुच में वो धनुष क्या था? कुछ नहीं, लक्ष्मण जी के लिए कुछ नहीं है, ये सारी पृथ्वी को गेंद जैसा लेकर के दौड़ सकता है। आपको देख करके ये वीरता में आ गया, यदि युद्धों के लिए ललकारते हैं तो हम लोग तैयार हैं। उन्होंने अच्छा एक धनुष अपना दिया, बजे इसको चढ़ा दो तो हमारा सारा संदेह मिट जाएगा। राम ने जब ही धनुष लिया तभी वो अपने आप चढ़ गया, कहे आप कहां मारूं, आपको मारूं कि आपके तपस्या के फल को मारूं? कहे हमें मारने से तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारी तपस्या का ही फल सब ले लीजिए, अब हमारा संदेह मिट गया, आप नारायण हैं। बस रामचंद्र धनुष उठाया और उनके कर्म का तपस्या का फल ले लिया, वो साधारण आदमी हो गए, जो पहले भगवत्ता उनमें थी सक्तावेश अवतार वो हट गया। राम को प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम करके अपने आश्रम में चले गए। तब इन्होंने दिखा दी परशुराम जैसा व्यक्ति भी इसको प्रणाम करके गया, अपने आप सब भाग गए। अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों की शादी वही हुई, सीता जी से रामचंद्र जी का, और अपनी जनक की जो खास लड़की थी सीता जी, लड़की उनकी पुत्री नहीं थी, वो तो जमीन से पैदा हुई थी, उनकी अपनी बेटी के साथ में और दो उनके भाई, भाई की दो लड़कियां थी, चारों की चारों से शादी हुई। और बारात बहुत सुंदर लेकर के आए महाराज दशरथ, शादी करके लौट गए। कुछ दिन चला ऐसे। अब एक दिन रामचंद्र जी कैकई के राजभवन में गए, कैकई अपने पुत्र भरत से भी अधिक राम को प्यार करती थी और राम भी कौशल्या की भांति ही कैकई को प्यार करते थे, प्राय सब समय उन्हीं के राजमहल में उन्हीं की गोदी में खेलते कूदते और रहते थे। एक दिन राम कैकई मैया से बोले, जे मैया तू हमें बड़ा प्यार करती हो, हम एक चीज तुमसे मांगना चाहते हैं। तो तुम चीज क्या मांगना चाहते हैं? हमारे प्राणों को भी मांगोगे तो मैं दे दूंगी। रामचंद्र जी ने प्राण देना सहज है, किंतु उसको निभाना बड़ा भारी कठिन है। तुम यदि कहो वचन दो जे हाँ हम देंगी, तो मैं मांगू। हमने अच्छा तुम मांग लो, कहे हम चाहते हैं देवता लोग बड़े चिंतित हैं, रावण इत्यादि उनको कष्ट दे रहे हैं, पृथ्वी भाषा नहीं पा रही है इन अधार्मिक राजाओं की, इसलिए मुझे जंगल वन में जाना है और देवताओं का कार्य है करना है, असुरों को मार करके पृथ्वी का भार हल्का करना है। इसलिए मैं तुमसे ये चाहता हूं कि महाराज जी से, हमारे पिताजी से दो बार मांग लो। तुमको मैं जानता हूं जो तुमको देने के लिए कहे हैं, पहले बार से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास दो और दूसरे से भरत को राजगद्दी। वो तो एकदम सन्न रह गई, ये कैसे हो सकता है, तुम हमारे भरत से भी प्यारे हो, मैं ऐसा वर नहीं दे सकता, दे सकती। नगे जो तुमने वचन दिया है और हमारा कार्य नहीं होगा, देवताओं का कार्य नहीं होगा, पृथ्वी का कार्य नहीं होगा, धर्म की रक्षा नहीं होगी, तुम यदि धर्म की रक्षा करनी चाहती हो तो ये वर तुम्हें मांगना है। फिर उसने कहा ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं मर नहीं गई और मुझको ऐसा पार्ट प्ले करना पड़ेगा, इसलिए माता कैकेयी ऐसी नहीं थी जो रामचंद्र का विरोधी करके उसको वन भेजे, किंतु रामचंद्र जी के वर के वजह से मांगने से ही उसने वर मांगा। और दूसरी बात, महाराज दशरथ ने प्रतिज्ञा की थी कैकेयी नरेश को, जो तुम्हारे लड़की से जो पुत्र पैदा हुआ वही राज्य का सिंहासन पाएगा, इसको भी कैकेयी को ठीक करना था, रामचंद्र जी ये भी जानते थे, इसलिए यदि वो बर होगा तो उसके भरत जी राजगद्दी पर बैठेंगे और साथ साथ मैं असुरों का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा करूंगा। कैकेयी के समझाने पर समझ गई, कहा जैसे हमारे लिए बहुत कठिन है, पढ़ दे देना ठीक है, किंतु तो भी जब बेटा ऐसा कह रहा है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। इसलिए कैकेयी ने जो किया कैकेयी का दोष नहीं था। रामायण भर में जितने भी पात्र हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं और हैं, इनका जैसा करुण पार्ट किसी का नहीं है। इन्होंने प्राण देने के बदले में ये वचन दिया राम को और उसको निभाया, और जगत में इनके इस काम के लिए कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता, नहीं रखता। इतनी लंछना, लोगों की बातें असह्य सुनी कैकेयी ने, यहां तक कि वशिष्ठ जी ने भी उसको समझाया, जब रामचंद्र जी के लिए युवराज पद दिया जा रहा था, रामचंद्र जी को कल ही देना है, भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल गए हैं नानी के यहां, महाराज दशरथ ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, राम बहुत योग्य है, मेरी इच्छा है कि इसी को राजगद्दी दी जाए, मेरे बाद अभी राजकुमार हो, युवराज पद। जितने ऋषि महर्षि मंत्री लोग थे बड़े आनंदित हो गए कि अनुमोदन किया, कल ही मुहूर्त है और कल ही इनको युवराज पद दिया जाए, घोषणा हो गई ये कल रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा और सभी कुछ ठीक होगा। इतने में मंथरा कुब्जा की, कुब्जा मंथरा ना मंथरा कैकेयी की दासी, उसके पास दौड़ी गई अरे तुमने सब कुछ सुना, बोलो तो क्या सुना, कहां सुना, क्या सुना? देखो कल रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाएगा और आज तू रानी है, कल तू दासी हो जाएगी कौशल्या की, राजमाता नहीं होगी। कैकई ने अपने गले का सुंदर हार सोने का उसको दिया, तुमने शुभ समाचार कहा है, राम राजा होगा, ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए तुमको हार, उसने हार निकाल करके फेंक दिया। अरे दुर्बुद्धि, तुमको बुद्धि नहीं है, भरत रामचंद्र राजा होगा और भरत उसका दास होगा और तुम दास की माता होगी, राजमाता नहीं रहेगी, राम का हुक्म चलेगा, कौशल्या राजमाता होकर के हुक्म चलाएगी और तू उसके अधीन रहेगी। तुमको इस बात का पता नहीं है, बहुत कुछ कहा, अंत में कहा शत्रुघ्न और भरत और शत्रुघ्न को भेज दिया ननिहाल में, इसीलिए जो कोई विघ्न नहीं होगा। देखो तो कितना चालाक है, उसने समझा जी ठीक, ये तो पॉलिसी करके ऐसा हुआ है। तब फिर उसने वर मांगा, महाराज दशरथ मैं, मुझको आज उस वर की याद आई, मुझे जरूरत है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, हाँ हाँ तुम मांग लो। किंतु जब उसने मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत की राजगद्दी हो, महाराज जनक दशरथ जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि भरत को राजगद्दी दिलवा दो, किंतु राम को वनवास क्यों दिलाती है? किंतु ये तस्य मस नहीं हुई। ओ तुम बड़े वीर हो, कहते हो कि हम जिसको वचन देते हैं, रव कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बर वचन न जाय, ऐसे भीरु कापुरुष हमको वचन दिया और उसको पूरा नहीं कर रहा। इस तरह से जब करने लगी, महाराज दशरथ चुप हो गए। उस समय में कैकई ने राम को बुलवाया, राम ने कहा पिताजी आज बोल नहीं रहे हैं क्यों, माताजी क्या बात है? तो मैंने इसे साधारण दो बार मांगे थे और उसमें रामचंद्र तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगा था, कह करके अपने वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं, अब इसी के लिए तुमको बुलाया गया है। राम का इतनी छोटी सी बात, मैं बचपन से यही चाहता था जब भरत को राजगद्दी मिले, भाइयों को मिले, अभी मैं तैयार हो जाता हूं। तो अच्छा बेटा ऐसा ही करो, जल्दी से तैयार हो करके। रामचंद्र जी गए, कौशल्या जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में सीता जी बोले जी मैं भी चलूंगी, लक्ष्मण जी बोले जी मैं भी चलूंगी, चलूंगा। सीता जी को बहुत रामचंद्र जी ने समझाया किंतु मानी नहीं। कौशल्या माँ से बोली जैसे माता जी आपने सिखलाया है पतिव्रता धर्म, मैं तो उनके प्राण के समान सासी साथ में रहना चाहती हूं, आप आदेश दीजिए इनको। तो कौशल्या जी ने कहा बेटा स्त्रियों का यही धर्म है, इसको ले जाओ। लक्ष्मण जी अपनी माता से गए मांगने के लिए आदेश, उन्होंने कहा आज मैं पुत्रवती हूं, तुम्हारा जन्म देना सार्थक हुआ, जे राम की सेवा के लिए जा रहे। फिर रामचंद्र जी गए कैकई के पास में जहां पर महाराज थे, उसने बलकल वस्त्र दिए और उनको पहना करके रामचंद्र जी वहां से निकल करके किष्किंधा में पहुंचे और किष्किंधा से चित्रकूट में पहुंचे। ना ना थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बाकी।
Very good. who has broken the bow of my guru? Janimaraj will tell me, I'll kill you, I'll kill everyone, and I'll kill the person who broke my bow. And everyone was shaking because Parashuram was very fierce. Then Lakshmi could not tolerate this. Therefore, he challenged Parashuram. Oh, Maharaj, I didn't know you were so attached to bows. When we were kids, we broke many as children. That time, we did not cry. Why are you crying so much now? That was only an old bow. You picked it up and it broke. But if you're so attached, we'll give you a new one. Don't worry. And Parashuram was angry and began. He picked up his axe. Parashuram, round of the axe. Then Lakshman, he said, oh, you want to fight? Don't just show your axe, come on. That time, Lakshman, the Parashuram said, because you're only a child, I'm not killing you. Then Ram, he stood up. Ram stood up and said, oh, please forgive my young brother, he's like a child. He could not understand if you were a Brahmin or a soldier. Because you have the Brahmin thread, but you have a bow now and an axe. Because my brother, he mistook you. Instead of knowing you as a Brahmin, he mistook you as a Kshatriya, therefore he's challenging you. Because he is from the Surya monks. He cannot refuse a fight. Therefore, Parashuram began pleased. And Lakshmi began challenging. Then Parashuram began pleased again by Ram. So finally, Parashuram had a doubt. Who can break the bow of my guru, Lord Shiva? Only someone superior to Shiva can break it. It must be Narayan. Some doubt was there. Then we asked Ram, can you take my bow and arrow? If you can string it and get it ready for fighting, then I know you must be Narayan. So the bow in the hand of Parashuram, and we automatically went to the hand of Ram. And Ram took an arrow and said, where will I put it? This arrow must go somewhere. Either this arrow will kill you, or this arrow will kill your austerities. And Parashuram thought, if it kills me, that's not very good. Therefore, you can kill my austerities. Because if I'm still alive, I can do some more austerities. Therefore, Ram took all the energy out of Parashuram, because Parashuram is Satya Veshavata. He's a special jiva empowered by the energy of Ram. Therefore, Ram took his energy back, and Parashuram went into the forest. So, Kaikeyi, oh, that's right, then was the marriage. So, Ram was married to Sita. Sita is not the real daughter of Janak Maharaj, because Sita Devi manifested from the earth. But Janak Maharaj had one other daughter that he married. His daughter and the daughters of his two brothers to Satyugna, Lakshman and Bharata. Therefore, all four brothers were married together. Then, we must understand the position of Kaikeyi. She is much maligned. Even today, another person will call their daughter Kaikeyi. But she actually loves Ram so much, even more than Bharata. And Ram loves her so much, like his own mother also. Therefore, Ram always used to play on the lap of Kaikeyi. One day, Ram said, as a child, said to Kaikeyi, oh mother, promise me you will give me two benedictions. And Kaikeyi laughed, even if you want my life, I can give that. I want to speak of two benedictions. Then Ram said, promise me you will say yes. She said, yes, my son, whatever you want, I will give you. Then Ram said, I want the benedictions. I will go to the forest for 14 years, and Bharat, my brother, will be king. Kaikeyi began weeping. Oh, how I can give such a benediction? Then Ram made her understand. There are many demons who are also a burden to the earth and who are disturbing the demigods and the sadhus. Where are they living? Down to Karanya. If I stay in a yogi, I cannot kill the demons, I cannot kill Rama, I cannot do anything. But I go to the forest and I can clean up the forest of all the demons. But if I stay in a yogi, I cannot perform any activities. Therefore, even though she was opposed to giving this benediction, Ram begged her. So finally, Kaikeyi agreed. There is no fault in Kaikeyi. She did this simply to fulfill the desire of Ram. Also, you may remember when KK was married, then KK's father said, I'll give my daughter to one condition, her son will be king. So Babaji also knew all these things. So, the next day, Ram will be king, according to the astrologers like Vishwamitra. Tomorrow is the best day that Ram should be appointed as Rajkumar. That time, Bharat and Sushumna were not in Ayodhya. They were at the house of their maternal uncles. So, they were not there. So the next day was the coronation of Ram. So that time, Mantara, everyone called their daughter Mantara, she was a hunchback. She came and she was a maidservant of Kaikeyi. Therefore she said, oh Kaikeyi, don't you know, from tomorrow you become the maidservant of Kausalya. Why? Because her son Bharat will be king. No. Her son Ram will be king. Therefore you cannot be called Rajman anymore, you will become the servant of Kausalya. And Kaikeyi said, that's very excellent news. Could there be anything superior to this? She took up her necklace and gave it to Mantara. When Mantara was angry, she threw it, very angry. How foolish you are! You are very happy, this is your life poison for you. And she poisoned the mind of Kaikeyi. So what should I do? When Kaikeyi remembered the two promises of Dasarath Maharaj. Therefore she went, oh Dasarath Maharaj, you promised to give me two benedictions. What do you want? Dasarath Maharaj said, yes, of course, whatever you want, I will give you. I want that my son Bharat will be king. I want that Ram will go to the forest for 14 years. Then Dasarath Maharaj began weeping. I don't mind that Bharat will be king. This is nothing. But Ram must go to the forest for 14 years. Then Kaikeyi said, for the first time in the dynasty of the Ikshvaku, that one of the kings is breaking his promise. And Dasarath Maharaj was weeping. When Ramchandra was called there, he saw his father was silent. Oh father, what is the problem? He could not speak, he was so much sad. Then Kaikeyi said, your father promised me two things. You will go to the forest for 14 years, and your brother will be king. Then Ramji smiled. For such a small thing, you are becoming upset. For many years, since childhood, I wanted my brother Bharat to be king. It's a matter of great happiness for me. Therefore, I'm ready to fulfill my father's words just now. And she said, okay. She gave him bark and dress made of bark of trees. So, that time Sita said, I must go with you. And Sita's Kausalya said, yes, this is the Dharma, the religion of a woman to always follow her husband. And Lakshmana also went to his mother. I will also go to the forest of Ram. And Lakshmana's mother was very happy. Really? You are a real son, because you always give everything for the service of Ram. Therefore Ram, Sita and Lakshmana went to the forest.
महाराज दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत जी को और पुरोहित आदेश दिया, रामचंद्र जी के साथ में सारी सेनाएं और धन संपत्ति सब जाएगी, तुम उनको सब तैयार करके इनके साथ में ले चलो और सब जाओ। कैकेयी ने कहा जी हमारा बेटा शून्य कुछ भी नहीं रहेगा, शून्य पर राज्य करेगा। रामचंद्र जी ने कहा माता जी ठीक कह रही हैं, ये सब कुछ जैसा का तैसा ही रहना चाहिए। फिर रामचंद्र जी आदेश लेकर के कैकेयी का साधुओं जैसा जटाजूट बांध लिया, शीर बलकल बांध लिए और अयोध्या से निकले। सुमंत्र जी महाराज दशरथ की आज्ञा से रथ पर बिछा करके गए। महाराज दशरथ ने कहा इसको वन जंगल दिखला करके फिर लौटा लेना। कैकेयी को संदेह हुआ जो हो सकता है कि ऐसा करे। तब सुमंत्र जी ले गए और पहले गए अपने राज्य की सीमा पर, गुहक राज्य था। उसने कहा जी हमारा सब राज्य आपके लिए है, आप यहीं पर राज्य कीजिए, आपको अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम नगर में नहीं जाते और राज्य तो छोड़ करके आए हैं अयोध्या जैसा। फिर वहां से चित्रकूट गए और सुमंत जी लौट आए सुमंत्र जी जब लौट आए तो महाराज दशरथ ने देखा जी राम तो लौटा नहीं, बस हा राम और हा राम कहते फिर प्राण चले गए। मरते समय में कौशल्या के पास में वो थे और वहां दूसरी रानियां थी, कैकई को कहा तुम यहां से निकल जाओ, तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं, आज से हमारा संबंध विच्छेद है, और तुम्हारा बेटा यदि राज्य लिया तो हमको पिंडदान करने का भी उसको अधिकार नहीं होगा, नहीं? पिता से और पुत्र का हमारा संबंध वो भी टूट जाएगा। ये कठिन अभिसंपात दे करके हा राम कहते हुए चले गए। रामचंद्र जी चित्रकूट में पहुंचे हैं, लक्ष्मण जी ने कुटी बनाई, सीता जी के साथ में रहने लगे, और इधर भरत जी माता ननिहाल में थे शत्रुघ्न के साथ में। वशिष्ठ जी ने दूत भेजा जल्दी से आ जाओ, किस लिए आ जाओ नहीं बतलाया उनको जल्दी से, और उधर में उनकी बायां आंख फड़क रही और उन्होंने देखा गधे रेख रहे हैं, कौवे कांव कांव कर रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट रही है, अशगुन देखा। कहा क्या हो गया अयोध्या में? जब अयोध्या में पहुंचे देखा जी कोई उनके लिए स्वागत के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं है, अयोध्या विधवा की तरफ में सुनसान है, लोग हमारी तरफ में देखते हैं और घृणा से चले जाते हैं। सोचा जी पिताजी हमारी माता जी के घर में होंगे, वहां पर चलने से ही सब पता लगा जाए क्या बात हो गई। अपनी माता के घर में पहुंचे देखा वो तो सफेद धोती पहने हुई है और सिंदूर भी नहीं है। माता जी को प्रणाम किया, पूछा जी आप ऐसा क्यों? बेटा तुम्हारे लिए, क्या मेरे लिए? पिताजी कहाँ है? पिताजी स्वर्गलोक सिधारे। भैया राम कहाँ है? वो तो बन गया। लक्ष्मण वो भी और सीता जी के साथ। किस लिए? मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा, ये तुम राजा हो गई इसीलिए, जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया है, विधवा भी तुम्हारे लिए हुई, अब तुम राजगद्दी संभालो और पृथ्वी पर राज्य करो। जम यदि स्त्री नहीं होती और राम यदि नहीं बिगड़ते आज ही तुम्हारी हत्या कर देता। जाओ आज से तुम्हारे और हमारे अंदर में पुत्र और माता का संबंध समाप्त, सारा जीवन भर के लिए मैं तुम्हें अब माता नहीं कहूंगा, तुम रानी कहला सकती हो, मैं रानी ही संबोधन करूंगा। इसके बाद में गए वशिष्ठ ने कहा और सब मंत्रियों ने, जब आपको राज्य पद लेना चाहिए और महाराज जी का अंतिम संस्कार कीजिए, तेल में डुबाया हुआ है। अंतिम संस्कार किया और बोले जी नहीं मैं राज्य नहीं लेता, इस राज्य पर राम का अधिकार है, मैं उनको मनाने के लिए जाऊंगा, कल ही जाऊंगा। वशिष्ठ जी और सब रानियां भी तैयार हो जाएं, सारी सेनाएं भी चलेगी साथ साथ, बस सारी लोगों को लेकर के चलने लगे तो कैकई कौशल्या जी के पास में गई। केवल मैं ही यहां रहूंगी, मैं चलूंगी साथ में, आपके साथ चलना चाहता हूं बहन। रामचंद्र जी को मैं कहूंगी हमने जो वचन दिया था अब वचन हम छोड़ देते हैं, तुम चलो अयोध्या में, इसके लिए जाऊंगी। कौशल्या ने उनको भी साथ लिया और चित्रकूट में पहुंचे। भरत जी जब पहुंचे तो कौशल्या मां से बोले मैया तुमसे ये मांगता हूं कि तुम एक बार यदि कह दो राम से जो अयोध्या लौट जाए तो मान जाएगा, तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता। उसने बेटा मैं कैसे कह सकता हूं, राम भी तो पिता के आज्ञा के लिए ऐसा किया तो उसको मैं कैसे लौटाऊं, तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? नहीं तुम भी ठीक हो, तुम्हारा राम के प्रति इतना प्रेम है किंतु राम अपनी मर्यादा छोड़ नहीं सकता, मैं कैसे कहूं? वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ जी गुरु जी आप आदेश देंगे, राम जरूर मानेगा, अयोध्या लौट जाएगा, राज गद्दी ले लेगा, आप उससे कह दीजिए, आदेश दीजिए। कहीं मैं ऐसा कह नहीं सकता, वो तो कोई अधर्म के विरुद्ध नहीं कह रहा है, और मैं तुम भी देखो एक बात समझना, रामचंद्र जी धर्म की मर्यादा की माला की तरफ में है, और भरत का प्रेम अथाह समुद्र अनंत समुद्र के समान है, इसलिए भरत के प्रेम में राम डूब जाएगा, किंतु हिमालय जैसे इधर उधर नहीं होगा, ऐसे अपने बात से भी इधर उधर नहीं हो सकता। अंत में उन्होंने सुनैना उनसे महाराज जनक की पत्नी से भेजवाया, ये किसी प्रकार से राम को वहां पर लौट आना है, तुम्हारी बेटी वन जंगल में जाएगी, बड़ा कष्ट पाएगी, अच्छा मैं अपने पति से कहूंगा। उस दिन वो भी जनक जी भी आए, बड़ी भारी सभा बैठी, एक तरफ में ऋषि लोग बैठे, एक तरफ में महर्षि वशिष्ठ जी बैठे, अयोध्या के लोग बैठे, एक तरफ में राम बैठे, एक तरफ में माताएं बैठी, एक तरफ में भरत बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज जनक, आप ठीक समय पर आए हैं, अयोध्या की नाव समुद्र में डोल रही है, डूबने वाली है, कोई बचाने वाला नहीं है, आप जिसको जैसा आदेश देंगे वैसा ही पालन करेगा राम भी और भरत भी, आप उचित जो समझे वही आदेश दीजिए, जिसे ये भरत भी संतुष्ट हो जाएगी भी। उन्होंने कहा, अच्छा मैं अपने गुरु को स्मरण करता हूं, जो गुरु कहवाएंगे वही कहूंगा, ध्यान लगाया और शंकर जी को प्रणाम किया, और बोले जैसे हमारे गुरु जी जैसा हमको प्रेरणा दे रहे हैं वैसा कह रहा हूंगा, भरत मेरी बात मानेगा, जो अवश्य मानेगा, आप मेरे पिता भी हैं गुरु भी हैं। रामचंद्र जी के तरफ में देखा, मेरी बात मानोगे, जरूर मानूंगा, आप मेरे गुरु भी हैं और जानकी के पिता हैं, इसलिए मेरे भी पिता लगे, और पिताजी तो हैं नहीं, आप ही सब कुछ है, आप जो कहेंगे मानेंगे। जनक जी ने कहा, भरत की जीत हुई, भरत जी और सब लोग बड़े खुश हुए, अब ये राज सिंहासन ले लिया और अयोध्या लौट रहे हैं। जब भरत बहुत खुश हुए तो फिर ये बोले, जनक जी देखो प्रेम की भी एक मर्यादा होती है, प्रेम किसको कहते हैं उसको सीखो, प्रेम लेना नहीं जानता, देना ही जानता है। राम तुम्हारा इष्ट है, अब राम से तुम पूछो, अब तक तो तुम ये सोच रहा था जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है, वहां जाने से मैं बहुत खुशी हो जाऊंगा, रामचंद्र जी की सेवा करके बहुत आनंद से रहूंगा, किंतु तुमने कभी ये सोचा जे राम क्या चाहते हैं और कैसे सुखी होते हैं? इसी का नाम भक्ति है। तुम्हारा जो इष्ट है उसको क्या अच्छा लगता है वो करना हमें उचित है, तब तो भक्ति होगी। और मैं ठंड में, ठंडा लग रही है तो हमारे इष्टदेव को भी ठंडा लग रहा हो, जब गर्मी हमें लगती है पंखे की जरूरत तो झलते हैं पंखा ठाकुर जी को भी, ये तो अपने मन के अनुसार में कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए इसका नाम है भक्त। पूछो राम से, राम किस में प्रसन्न है, अब तक तो अपनी इच्छा तुम प्रकाश, अपने इच्छा से जो अच्छा लगता था अपने लिए मांगता था, अब समझो। भरत जी उठे और जनक जी के चरणों में गिरे, आपने आज हमारी आंखें खोल दी, मैं सोचता था कि वहां हम जाने से, रामचंद्र जी जाने से, अयोध्या का सिंहासन लेने से हम सभी प्रजाएं, सभी माताएं, सब सभी लोग खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। किंतु मैंने नहीं सोचा था कि आप क्या चाहते हैं। आप बतलाइए आप किस में खुशी हैं। रामचंद्र जी ने कहा जो जनक महाराज जी ने निर्णय दिया है वो ठीक है, तुम्हारी जीत है और मेरी हार है, इसलिए तुम्हारी जीत होने से मैंने सिंहासन पद राज मथुर अयोध्या का मैंने ले लिया अपने सिर पर, मैं राजा अब हूं और तुम हमारे हमारे सेवक हो। देखो मैं चाहता हूं कि तुम 14 बरस तक हमारा प्रतिनिधि बन करके अयोध्या का राज देखो और 14 वर्ष के बाद में एक दिन का विलंब नहीं किए मैं आकर के और राज्य ले लूंगा। भरजे ने कहा जी ठीक है। रामचंद्र जी की खड़ाऊ सिर पर रखी, उनको प्रणाम किया और सारी माताओं के साथ में अयोध्या लौट गए। रामचंद्र जी भी वहां से उस स्थान को छोड़ करके फिर भरत आ जाएगा निकट है, इसलिए वो दंडका अरण्य की तरफ में चले गए। साथ ही में जब जा रहे थे तो महर्षि अत्रि के आश्रम में गए, वहां अनसुईया जी ने सीता जी को कुछ अलंकार और वस्त्र दिए, इस वस्त्र को धारण करने से तुम सदा आनंद से रहेगी, तुम्हारा सौंदर्य बना रहेगा और इन कपड़ों को धारण करने से कभी भी मैले नहीं होगी और तुमको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। फिर उन्होंने उनको धारण कराया ये सब चीज और रामचंद्र जी उनको प्रणाम करके दंडकारण। आज यहीं पर कथा समाप्त है। भक्ति इसको कहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, उस चीज को समझो और फिर उसी तरह से उनके आदेश को पालन करो, तब तो भक्ति होगी, अपने मन से करने से नहीं होगी।
If Ram, Lakshman, and Sita dressed in the bark of trees went to the forest, Dasar Maharaj ordered his minister, Sumantra, Cherry Driver, also to take Ram to the limits of the kingdom. Then Dasar Maharaj ordered all the wealth, all the army should go with Ram to the forest. Then Kajari said, "What, you're giving my son's property to someone else, then Balan will be empty, bankrupt." "No." Then Ram said, "Yes, what Mother Kaikeyi is saying is true." Therefore, Ram on the chariot went to the edge of the kingdom of Dasara Maharaj. And then he met his friend, Guha. So Guha invited Ram to stay with him, but Ram said, "No, I cannot stay in any city. I have taken a vow to stay in the forest." Therefore, from there, Ram went to Chitrakoot. When Dasar Maharaj saw the chariot of Sumantra return without Ram, Lakshman, and Sita, then Haram, he left this world. But before leaving, he said to Kaikeyi, "I will, even as when I die and go to the forefathers, even there I will not accept Pinda offered by your hand." Meanwhile, messengers have been sent by Dasara Maharaj to bring Balak from his maternal uncle's house. As Balak was
returning to Ayodhya, then he saw
many inauspicious signs. His left side of his body was shaking, his left eye was twitching. Inauspicious animals like donkeys were crying, crows were cawing, cats were crossing the road in front of him. Very inauspicious. Balak was thinking, "No one is welcoming me. Everyone is looking at me with dirty vision, dirty glance. People are avoiding me. Why? Where is my father? Maybe he's in the palace of my mother. He went there." Then he saw his mother Kaikeyi come in white cloth with no sindhu and no ornaments. Oh, mother, what happened to you? Where is your father? My father. Oh, son, he is gone to Paralok, the higher destination. Where is Ram? Where is Sita? Where is Lakshman? Oh, they have all gone to the forest. I have done this for you. I have taken benedictions from Dasarath Maharaj that Ram will go to the forest for 14 years and you will be king. Then Bharat said, if you were another woman, I would cut off your head. And also, if I cut off your head, Ram would not be pleased. Therefore, I am not doing it. But from this day, you and me have no relation as mother and son. Therefore, Bharat never called her mother. From that day, he only called her Queen Kanke. Therefore, Bharat Maharaj performed the funeral rites of his father. But he decided, I will not accept the kingdom. They were taking, Bharat took all the ministers, the queens of Dasarath Maharaj, all the Praja, the citizens, and the army all went to Chitrakoot to meet with Ram. That time was a great meeting between Bharat and Ram. So Ram asked to Mother Kausalya, oh Mother, Ram will never disobey your order. If you order Ram to come back and be king of Ayodhya, he must accept. And Kausalya said, I cannot do such a thing. How can I tell Ram to break the promise of his father? And Bharat said, am I asking the wrong thing? No, no, you are okay. Your heart is good, but I cannot ask such a thing. Then Ram asked Vishishtha Rishi, oh Gurudev, Ram will never disobey your order. If you order him to remain in Ayodhya, he will stay. But Vishishtha also said, how I can tell Ram to disobey the order of his father? Therefore that time, Janak Maharaj came, the father of Sita. All the ministers fell at the feet of Janak Maharaj and said, you are sailing Ayodhya. Ayodhya is like a boat in the ocean about to sink, but you will sail it. Then they said, please tell us what to do. Then Janak Maharaj, he said, if I give any advice, will everybody accept? And Bharat said, we must accept. You are like my father and guru. And Ram also agreed. Therefore, on one side was Ram, Sita, Lakshman. On the other side was Bharat. And then the queens and ministers were all gathered together. Then Janak Maharaj, he remembered his Gurudev, Shankar, and said, whatever Shankar speaks from my mouth, that I am speaking. He closed his eyes in meditation and said, Bharat is the winner. And everyone began cheering. Oh, that means Ram will come to the from the forest to Ayodhya. Then Janak Maharaj said, Ram, he is like a mountain, like a Himalaya. You cannot move it. Ram's following of religious principles is like a mountain. And Bharat's prema is like an ocean which has covered the mountain. But still the mountain is not moving. Therefore, Janak Maharaj said, oh Bharat, can you tell me what is prema? And Bharat said, Gurudev, you can tell me. Prema means how I can please my Ishtadev, my worshipful deity. Then Bharat began weeping, yes, Gurudev, you have opened my eyes. From now, I was only thinking, what do I want? I want Ram to be king. I want to be happy serving Ram. I want this, I want that. But I never asked Ram, what does he want? Therefore Bharat asked Ram, what do you want? And Ram said, I want that I will go to the forest for 14 years and you will rule Ayodhya as my representative. Therefore, from there, Bharat, Shatrughna and everyone else went back to Ayodhya. Sitaram Lakshman went to the forest, to Dantakarani. There they met Anusuya, the wife of Atri Rishi. She gave many instructions on a woman's religion to Sita, and she gave her some ornaments and cloth. Oh Sita, if you wear this, you will never be hungry, you will never be thirsty, you will never become dirty, you will never be distressed. Then we should also learn this.
What is prema?
We should also learn this. What is prema? Oh, I want to serve Gurudev like this. I will do this, but we are not asking Gurudev what service he wants from us. We think I'm cold, I'm hot, therefore be hot if we put on the AC, but actually it's for us, it's not for Tanguji, that we can learn all these things from these, the teachings and pastimes of Lord Ram. How to serve our Ishtadev, Guru and Gauranga, according to their own desire.
My first time,